तो जैसे आप सबने इस सीजन की वाणी सुनी होंगी अभी 30 तारीख की, तो हमें जो पुरुषार्थ करना है उस वाणी अनुसार पुरुषार्थ करना है। विशेष बाबा ने इस वाणी में जो कुछ बातें अंडरलाइन कराई, कौन सी कराई? ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण बनना है, और उसके लिए बाबा ने विशेष कुछ बातों का पुरुषार्थ, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, ब्रह्मा बाप जाते जाते ये तीन बातों की शिक्षा देके गए थे। तो हम इस मुरली को सदा, क्योंकि जैसे अभी 15 तारीख फिर बाबा आएंगे, तो हमें क्या करना है, जैसे अभी मुरली चलती है उसको ही 15 दिन तक, बाबा आने तक क्या करना है, उसको प्रैक्टिकल में, धारणा में लाना है। तो मुरली को सबसे पहले हमें धारणा में लाने के लिए, क्योंकि वर्तमान समय जो वाणियां चलती है, जैसा माया किस तरह से बच्चों के उन्नति में बाधक बातें ला रही, उसी को देख करके बाबा क्या करता है, उसी समय महावाक्य उच्चारण करता है। तो इसीलिए बाबा के महावाक्य हमें उसको भूलना नहीं। तो इस मुरली की शिक्षाओं को याद करने के लिए सहज तरीका है, उसमें जो बाबा ने सोमान दिया है उस सोमान को याद करो। जैसे अगर उसको याद करना है, उसका कैसे अभ्यास करना है, उसका सहज तरीका, उसको कैसे याद करना है, एक कहानी के रूप में उस मुरली को याद कर सके। तो जैसे सोमान लो कि उसमें से मैं परमात्म दिल तख्त पर रहने वाली महान आत्मा हूं, ब्रह्मा बाप समान हूं, बस ये सोमान पूरा 15 दिन तक रखना है। और उसको प्रैक्टिकल में फिर अभ्यास कैसे करना है, मैं आत्मा राजा, अभ्यास किस तरह से करना है, मैं आत्मा राजा परम धाम से आता हूं, और परम धाम से आकर के भ्रुकुटी के तख्त में बैठ करके ये अपनी राजधानी का कारोबार करता हूं, सो राज्याधिकारी करता हूं। इसके लिए भ्रुकुटी में तख्त पर बैठ करके मेरी जो कर्मेंद्रिय रूपी प्रजा मुझे मिली है, उन सबको सही डायरेक्शन देता हूं। मन बुद्धि मुझे मंत्री मिलाए, और इन मंत्रियों के द्वारा और कर्मेंद्रिय के द्वारा सारा दिन अपना राज्य कारोबार करता हूं, और फिर वापिस अपने धाम में जाता हूं, और जाकर के कहां सोता हूं, परमात्म दिल तख्त पर सोता हूं। अगर जिस दिन मेरा राज्य कारोबार ठीक नहीं हुआ, मंत्री ने या प्रजा ने कुछ धोखा दिया, वो परमात्मा मुझे अपने दिल तख्त पर बैठने नहीं देता, तो इसीलिए मैं रोज आता हूं और आकर के अपने सभी कर्मेंद्र रूपी प्रजा की और मंत्रियों की क्या करता हूं, उनका दरबार लगाता हूं, और दरबार लगा करके सबको ऑर्डर देता हूं, आज जैसा मैं कहता हूं उस अनुसार आपको चलना है, अगर कोई भी धोखा देगा तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। अगर मुख ने सजा धोखा दिया तो मुख को सजा कौन सी देना है, उसका कारोबार दूसरे दिन बंद। अगर कान ने कुछ धोखा दिया तो उसका भी कारोबार बंद। तो इस तरह से हमें, जैसे ऊपर से आकर के राज्य कारोबार करता हूं, क्यों मैं इनको ऑर्डर पर चलाता हूं, क्योंकि इन्हीं कर्मेंद्र रूपी प्रजा ने और इन्हीं मंत्रियों ने मुझे क्या किया, अपने मन मत पर चल करके मुझे शक्तिहीन बना दिया, और शक्तिहीन बना करके मुझे क्या किया, रावण के कैद में रख दिया, रावण में ने मेरा क्या किया, स्वतंत्रता छीन ली, और इसके कारण मैं दुखी बन गया, शक्तिहीन बन गया, मेरा ताज था चला गया, तखत था चला गया, मेरा राज्य खत्म हो गया, सब कुछ मैं एकदम दुखी बन गया। 2500 वर्ष तक मैं एकदम दुखी था, और मेरा हित चिंतक जो मित्र है उसको मैं पुकारता रहा परमात्मा को, तो उसने आकर के फिर मुझे, हित चिंतक परमात्मा ने आकर के मुझे उस रावण के कैद से छुड़ा दिया, और फिर मुझे डायरेक्शन दिया कि अभी तुम मेरे मंत्र पर चलो, और उसके लिए मुझे वो रोज क्या करता है, ऊपर लेके जाता है और शक्ति भरता है राज्य करने के लिए, और फिर वापस भेजता है। तो इसीलिए मुझे अभी क्या करना है, वो सभी कर्मेंद्र रूपी प्रजा को और मंत्रियों को अपने आर्डर प्रमाण चलाना है। और उसने फिर से माया रावण क्या करता है, मुझे अपना स्वतंत्रता भंग करने के लिए प्लान बनाता है। कौन सा प्लान, वो क्या करता है, व्यर्थ बातों को क्रिएट करता है। तो इसीलिए मुझे अभी क्या करना है, व्यर्थ माया को समझ करके उस अनुसार व्यर्थ में, व्यर्थ से मुक्त रहना है। और इसके लिए मुझे उस परमात्मा ने इतना अच्छा मेरे ऊपर उपकार किया, मुझे उस रावण के जेल से छुड़ाया, इसीलिए मुझे अभी रिटर्न भी देना पड़ेगा कुछ, क्योंकि अभी फिर से मुझे मेरी स्वतंत्रता हो करके बहुत दिन हो गए, और फिर मुझे अभी रिटर्न जर्नी करनी है, वापिस जाना है। तो मुझे रिटर्न में क्या देना है, मुझे टर्न स्वयं को करना है, परिवर्तन करना है, और उसके लिए मुझे ब्रह्मा बाप समान कर्म बोल संकल्प को बनाना है, निराकारी निर्विकारी बनना है। और इसी आशा को लेकर के जब मैं बेफिक्र बादशाह की तरह बनना है, और यही संकल्प लेकर के मैं इसी मिलन मेले से वापस अपने कर्म क्षेत्र पर जा रहे। तो इस तरह से अगर सारा दिन ये आप अभ्यास करेंगे तो देखो ये पूरा मुरली का एक एक सेंटेंस जो बाबा ने विशेष जो अभ्यास बताया, बेफिक्र बादशाह बनना है, वेरत से बचना है, रिटर्न जर्नी है, दिल तख्त पर बैठना है, ब्रुकुटी, पूरा इसके अंदर जो मेन अभ्यास वो पूरा ये क्या हो गया आपको याद रहेगा। इस तरह से 15 दिन अगर इस सोमान का अभ्यास करेंगे तो सहज आप इस मुरली को याद भी कर सकेंगे और साथ में ब्रह्मा बाप समान, क्योंकि ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए बाबन का निराकारी बनो, निर्विकारी बनो और निरंकारी। इसमें से पहला शब्द ये नहीं आएगा निर्विकारी बनो, पहला आएगा निराकारी। क्यों? निर्विकारी बनने के लिए पुरुषार्थ कौन सा है? निराकारी। जो निराकारी अर्थात आत्म स्वरूप में रहेंगे वही निर्विकारी बन सकेंगे। अगर आप संस्कारों को परिवर्तन करना या कोई भी विकारों को निकालना है उसके लिए पुरुषार्थ कौन सा है? आत्माभिमानी स्थिति का। जैसे कोई घर में भूत आता है, अगर भूत आए उस भूत को निकालने के लिए क्या करते हैं? अगर उस घर में कुछ नहीं करो, लाइट जला करके रखो, तो भूत क्या करेगा? अपने आप वो बंगला छोड़ करके चले जाएगा। अगर लाइट को जलाया नहीं और भूतों को निकालने की कोशिश करेंगे, भूत जाएगा क्या? क्योंकि जहां अंधकार होता है वहां भूत रहता है। तो इसी तरह मेरे इस देह रूपी घर में बहुत सारे भूत घुसे हुए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कई प्रकार के, तो इसीलिए मुझे इस भूतों को अभी निकालना है। तो क्या करना है? आत्माभिमानी बनना है। आत्मा की लाइट जला करके रखो तो भूत क्या करेगा? बंगला छोड़ करके चला जाएगा। इसीलिए बाबा ने खास कहा कि निराकारी बनो। जब निराकारी बनेंगे, अगर कोई भी संस्कार है या कोई भी विकार है उसका कारण है देह भान। देह भान सबसे बड़ा विकार है। ये समझो हमें कोई भी प्रकार का गुण लाना है अपने जीवन में, गुण लाना है या कोई भी संस्कार को हटाना है, तो उसके लिए पुरुषार्थ है। अगर हमने आत्मा समझा ही नहीं तो वो संस्कार जाएगा नहीं या कोई भी गुण हमारे अंदर नहीं आएगा। तो इसीलिए आत्माभिमानी पुरुषार्थ है। इसके लिए हमें क्या करना है? घोट घोट करके इस बात को पक्का करना है, तब हमारी निर्विकारी स्टेज आएगी। और निर्विकारी स्टेज होने के बाद भी हमें अहंकार आएगा, देखा मेरे अंदर सब विकार खत्म हो गए, मैंने छोड़ दिया। तो इसीलिए बाबा ने फिर लास्ट में निरहंकारी दोबारा शब्द यूज किया। वैसे उस विकारों के अंदर, पांच विकारों के अंदर अहंकार भी विकार आता है, लेकिन अगर वो अहंकार छोड़ा उसका भी अहंकार आएगा, इसीलिए निरहंकारी। तो ये तीन बातों का जो पुरुषार्थ बाबा ने खास, बाबा ने कहा ना अगले साल में ये पूरा साल ये तीन बातों का पुरुषार्थ करके बाबा को क्या करना है? प्रत्यक्ष करना है और बाप समान बनना है। तो इसलिए हमें विशेष आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ क्या करना है? करना है। और आत्माभिमानी का पुरुषार्थ करने के लिए जैसे आपको अभी एक्सरसाइज बताई, रोज मैं आत्मा राजा ऊपर से आता हूँ, ब्रुकुटे तख्त पर बैठता हूँ और अपना राज्य कारोबार करता हूँ। अगर आपकी आत्माभिमानी स्थिति नहीं है तो आपके जैसे कोई घर में बड़ा नहीं है तो क्या हो जाता है? छोटे आपस में लड़ेंगे। तो इसी तरह अगर आपकी आत्माभिमानी स्थिति नहीं तो आपकी कर्मेंद्रिय आपका सुनेंगे नहीं, वो जो चाहे करेंगे, कान जो चाहे सुनेंगे, मुख जो चाहे बोलेगा, सब पूरा राज्य कारोबार में क्या हो जाएगा? गड़बड़ी चलेगी। तो इसीलिए राजा बनने का और कोई पुरुषार्थ नहीं, राजा बनने के लिए स्वपर राज्य, जितना जो स्वपर राज्य करेगा वही उसको, जितना स्वपर राज्य उतना ही विश्व का राजा बनेगा। और उतना ही अगर जितना स्वपर राज्य है उतना परमात्मा के दिल तख्त पर आप बैठ सकेंगे। जिसका स्वपर राज्य नहीं वो परमात्मा का दिल तख्त नहीं मिलेगा। और संगम युग में परमात्मा का दिल तख्त जिसको नहीं मिलेगा उसको भविष्य में विश्व की राजाई का तख्त नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये आत्माभिमानी का लेसन को हमें क्या करना है? पक्का करना है। जो ब्रह्मा बाबा ने भी शुरू में क्या किया, इस लेसन को पक्का किया। वास्तव में आत्माभिमानी स्थिति हमारे तो वैसे देखो 10% भी नहीं होगी मुश्किल से आत्माभिमानी स्थिति। आत्माभिमानी स्थिति अर्थात बहुत जिस जो मान अपमान निंदा ग्लानी सर्दी गर्मी इन सब से समझो हम भोजन खा रहे और बहुत अच्छा टेस्टी बना हुआ है ये फीलिंग आ रहे तो वो भी क्या है? देहबान। समझो सर्दी लग रही ये भी क्या है? क्योंकि आत्मा सर्दी गर्मी इनसे भी समझो कोई अपमान कर रहा है उसकी मुझे फीलिंग आ रही संकल्प चल रहे मुझे इन्होंने क्यों अपमान किया ये भी क्या है? देहबान। कोई कला आपके पास आई कोई गुण आई उसका अभिमान है तो भी ये भी क्या है? जो दो तीन दिन पहले बाबा ने वरदान में कहा था ना, तो ये बहुत सूक्ष्म हमारा इतना बड़ा देहबान है वो देहबान 2-3% भी हमारा छूटा नहीं, उतना ही हम मुरली सुन लेते, थोड़ा सा ज्ञान ले लिया और ही हमें, इसीलिए कहते हैं ना चूहा को मिली हल्दी की गाठी, वो बोला मैं क्या बन गया, पानसरी हो गया। तो इसीलिए हमें खास ये इस लेसन को क्या करना है, पक्का करना है। जितना हम आत्मा भी मनी बनेंगे उतना हमारे अंदर नम्रता भी आ सकती, क्योंकि हमारे संस्कार कैसे हो, जैसे ब्रह्मा बाबा देखो इतनी बड़ी हस्ती, लेकिन जैसे बाबा ना नमस्ते बाबा बच्चों को करते हैं, तो इसी तरह हमारे अंदर जितनी निर्मानता है, जैसे आज भी बाबा ने कहा ना निर्मानता ही हमें महान बना सकती है, अगर निर्मानता नहीं तो महानता नहीं, निर्मानता ही हमें दुआओं के पात्र, महिमा के पात्र बना सकते, अगर निर्मानता नहीं, जीवन में सिंप्लिसिटी नहीं, तो फिर महानता भी नहीं। जितना हम ऊंचे है उतना ही हमारे जीवन में, कहते ना विद्या विनय शोभते, जिसके पास विद्या है ज्ञान है कैसे पता चलेगा, जितनी नम्रता उतना ज्ञान है, अगर नम्रता नहीं। इसीलिए कोई भी कर्म करे, सेवा करे, दान पुण्य करे, लेकिन हमारे जीवन में क्या हो, नम्रता हो। इसीलिए बाबा ने कहा हमारे बोल भी कैसे हो, मधुर भाषी निर्मानता के बोल हो, तो ये नम्रता ही हमें निरहंकारी बनाएंगे, अगर नम्रता नहीं तो निरहंकारी भी नहीं बन सकेंगे। जैसे महाभारत में वगैरह दिखाते ना, जैसे जब अंतिम समय जब पांडवों की विजय होती, विजय होने के बाद उन सबको क्या लगता है, मेरे इतने अच्छे तीर चलाए इसके कारण क्या हो गया, बहुत अच्छी विजय होगी। दूसरा बोलता है कि नहीं मैंने इतनी अच्छी गदा चलाई इसके कारण विजय होगी, आपस में क्या करते हैं, लड़ते हैं। और उस समय जो एक जैसे महाभारत में बहुत अच्छा है उसका एक सीन दिखाते, जैसे एक बार जब वो युद्ध चलता है पांडवों का, उसी समय जो बारबरिक था जो भीम का पुत्र, उसको पता चलता है कि कौरवों का और पांडवों का युद्ध होने वाला है, तो वो सोचता है कि मैं भी उस युद्ध में शामिल हो जाऊं, लेकिन वो सोचता है कि मैं उसके साथ लड़ूंगा जिसकी पराजय होने वाली है, और कौरवों के तो पराजय होने वाली थी, उसने सोचा कि मैं उसके साथ लड़ूंगा। और उस बारबरी को एक वरदान था, उसको कोई भी मार नहीं सकता था, वो अमर था। तो जब कृष्ण को अंतर्दृष्टि से वो पता चला कि वो भी युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, तो वो क्या करता है, उसके रास्ते में जाता है, जो वो युद्ध करने के लिए आ रहा था उसी रास्ते में वेश बदल करके बैठता है ब्राह्मण बन करके, और फिर जब जाता है तो उसको बोलता है कि हे राजन आप युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते कुछ दान पुण्य करके जाओ ताकि आप सफलता आपको हो जाए। उसने कहा बोलो ब्राह्मण तुमको क्या चाहिए, बोला मैं जो मांगूंगा वो देंगे, बोला मैं वचन देता हूँ, कहा कि तुम्हारा सिर चाहिए। अभी सिर चाहिए तो उसने मांगा, वचन दिया था तो कहा कि देता हूँ, लेकिन तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम कुछ और हो, कहा कि तुम्हारा असली स्वरूप दिखाओ। तो वो क्या हो गया, कृष्ण ओरिजिनल स्वरूप में आया, कहा कि चलो आपने मैंने तो वचन दिया अभी देना पड़ेगा, लेकिन मेरे एक इच्छा है मुझे वो युद्ध देखना है। कहा कि ठीक है मैं दिखाऊंगा, तो उसका सिर लिया लेके गया और उसने क्या किया, एक पेड़ को टांग करके रख दिया, और जब युद्ध चलता है वो सिर क्या करता है, साक्षी होकर के पूरा वो सब युद्ध देखता है, और अंतिम में क्या होता है, युद्ध विजय हो जाते हैं पांडवों की, और पांडवों की आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। वो बोलता है कि भीम बोलता है कि मेरे गधा के कारण युद्ध जीत गया, बोलता है नहीं, अर्जुन बोलता है कि मेरे इतने अच्छे तीर चले उसके कारण युद्ध जीत गया। वो आपस में क्या होते हैं, लड़ते हैं। उसी समय वो सिर जोर जोर से हंसता है और बोलता है कि ना तुम्हारी गधा थी ना तुम्हारा तीर था, लेकिन एक सुदर्शन चक्रधारी वालों की कमाल थी। तो जब भीम को गुस्सा आता है वो जाकर के एक गधा उसके ऊपर मारता है, वो सिर टूट करके क्या करता है, चला जाता है। तो ये किसका यादगार है, ये हमारा वास्तव में ब्राह्मणों का यादगार है। हमारा भी क्या होगा, अंतिम समय विजय होगी, और विजय होने के बाद आपस में ये लड़ेंगे, बोलेंगे नहीं मैंने इतने अच्छे क्लासेस कराए इसके कारण इतने ब्राह्मण हो गए, बोले नहीं मैंने इतना दान पुण्य किया इतने सारे सेंटर पैसे दिए इसके कारण सेंटर अच्छा ये हो गया, दूसरा नहीं मैंने इतना अच्छा ये थे उसके कारण सेवा हो गई, मैंने दान पुण्य किया सेंटर बना करके दिया, आपस में क्या हो जाएगा। तो इसीलिए करण करावन बाबा को हम क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। वास्तव में कराने वाला कौन है, जैसे पपेट शो होता है ना, जैसे कठपुतली, वो चलाने वाला ऊपर बैठ करके वो अदृश्य होता है, दिखाई नहीं पड़ता, उसको धागे से क्या करता है, वो जो कठपुतली है उसको चलाता है। तो इसी तरह अगर कोई कहे वो कठपुतली बहुत अच्छी डांस करे, अगर वो चलाने वाला ऊपर डोर खींचे ही नहीं तो क्या हो जाएगा, वहीं लटक जाएगा। तो इसी तरह हमें कराने वाला कौन है, कराने वाला बाबा अदृश्य रूप में, समझो कई क्लासेस कराने के लिए लेके जाता है तो वो ऊपर क्या करता है, डोरी खींच करके लेके जा रहा है, अगर वहीं खींचेगा नहीं तो वहीं लटक जाएंगे। तो इसीलिए हमें सदा याद रखना है कि हम तो निमित्त है कराने वाला ऊपर से करा रहा है। अगर मैं और मेरा, इसलिए भावन कर माया जो वर्तमान समय चल रही, मैं और मेरेपन की में चल रही, मैं जो करता हूं, मैं अगर हम दान पुण्य किया, सेवा किया, बहुत कुछ किया, लेकिन वहां मैं जोड़ दिया तो आपका जमा नहीं होगा, आपके खाते में कुछ भी नहीं होगा। जैसे टाटा बिरला का सुनाते ना, जैसे एक बार उनकी जब वो जाता है, उसका शेरी छूटता है, ऊपर जाता है और जाकर के चित्रगुप्त को बोलता है कि बोलो मेरा कितना जमा है, मुझे अभी भविष्य में क्या बनना है। तो वो देखता है खाता खोल करके, बोलता है कि नहीं आपका कुछ भी जमा नहीं है। तो बोला ये कैसे हो सकता है, आपने गलत लिखा होगा। नहीं, बोला सही देखो। फिर देखा नहीं, तो बोला कि चलो धर्मराज के पास, उनको मैं बताता हूँ आपने ये गलत क्यों लिखा है। जब गए तो कहा कि मैंने इतना इतना धर्मशालाएं खोली, इतनी अच्छी अच्छी मंदिर बनाई, लेकिन मेरा इन्होंने ठीक नहीं लिखा। तो धर्मराज ने कहा कि आपने तो सब कुछ खोल के आए, लेकिन नाम किसका लिखा था? मंदिर था लक्ष्मी नारायण का, लेकिन नाम लिखा बिरला मंदिर। धर्मशाला थी लेकिन अपना नाम लिख दिया, इसके कारण कहा कि तुम्हारा नाम हो गया, इसके कारण तुम्हारा जमा कुछ भी नहीं। तो इसी तरह अगर हम यहाँ ही नाम मान शान कुछ चाहते तो हमारा जमा कुछ भी। तो इसीलिए सेवाएं करो, दान पुण्य करो, लेकिन बाबा ने कराया, बाबा धन्यवाद, बाबा के तरफ हमें प्रभावित करना है। अगर कोई भी सेवा की, कुछ भी किया और मेरे ऊपर प्रभावित किया, बाबा को भुला दिया, तो ये क्या होगी? सेवा सेवा नहीं है। तो इसीलिए हमें मई और मेरेपन को क्या करना है, समाप्त करके निर्माण बनना है। निर्माणता ही महानता है, निर्माणता ही दुआई देगी। और राजा बनने के लिए हमारे संस्कार कैसे चाहिए? निर्माणता के संस्कार चाहिए। जैसे देखो फलों में राजा किसको बोलते, किस फल को राजा बोलते? आम को बोलते। आम को क्यों बोलते? क्योंकि आम कैसा होता है, ऊपर से नरम होता है और अंदर से कैसा होता है, जो गुठली होते हैं वो सख्त होता है। इसी और नारियल कैसा होता है, ऊपर से कड़क होता है और अंदर से नरम होता है। तो राजा उसको कहा हुआ है, नारियल को नहीं कहा, लेकिन किसको? आम को। इसी तरह राजा बनने वाला जो व्यक्ति है वो कैसा होगा, ऊपर से नम्रचित और अंदर से कड़क, अर्थात अपने नियम में संयम में वो कड़क रहेगा, वही राजा बनेगा। इसीलिए बाबा ने खास देखो पिछला जो वर्ष दिया था, वो वर्ष भी किसी लिए दिया था? निर्माणता और नम्रचित का वर्ष दिया था। तो इसलिए हमें जितना इस अहंकार को खत्म करेंगे उतना ब्रह्मा बाप समान बनेंगे। अगर ब्रह्मा बाप समान बनना है तो हमारे अंदर जो भी कला है, विशेषता है, वो सब बाबा की देन है। तो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए हमें जितना इस निराकारी स्थिति का अभ्यास करेंगे उतना ही हमारा देह भान खत्म होगा, निर्विकारी बनेंगे और साथ में निरहंकारी बनेंगे। तो इसलिए हमें खास ये क्या करना है, इस वर्ष में पुरुषार्थ करना है। और उसके लिए जो बाबा ने अभी महावाक्य उच्चारण किए, उस व्यर्थ बातों को क्या करना है, खत्म करना है। क्योंकि व्यर्थ क्यों आता है? व्यर्थ आने का कारण है जब आपकी मन और बुद्धि बिजी नहीं है, कोई भी प्रकार का प्लान नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा, व्यर्थ आएगा। तो इसलिए रोज हमें सवेरे उठते ही हमें क्या करना है, कुछ पॉजिटिव थिंकिंग या कुछ ना कुछ क्या करना है, हमें कोई ना कोई सोमानों के अभ्यास, कोई ना कोई अच्छा अच्छा अभ्यास लेकर के फिर कर्म क्षेत्र पर जाना है, कोई ना कोई लक्ष्य लेकर के जाना है। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं, कुछ नहीं, ऐसे फ्री आप जा रहे, कोई आप मन बुद्धि में कोई प्लान नहीं, तो आपको क्या हो जाएगा, कर्म क्षेत्र पर होने वाली जो बातें है उसका क्या हो जाएगा, चिंतन करेगा होगा। क्योंकि माया क्या करेगी, जैसे बाबा ने माया वर्तमान जो स्वरूप है माया का, समस्या को क्रिएट करना या व्यर्थ बातों का, वो किसी के अंदर प्रवेश करके क्या करेगी, आपको अपमान कराएगी, निंदा कराएगी, ग्लानी कराएगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको व्यर्थ चलेगा। अगर आपकी मन बुद्धि बिजी है तो उस व्यर्थ बातों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हमें कर्म क्षेत्र पर जाते समय क्या करना है, पहले कुछ ना कुछ प्लान लेकर के चलना है, मुझे आज ऐसे रहना है, ऐसे करना है। जब हम कर्म क्षेत्र पर जाएंगे तो आज व्यर्थ को बिल्कुल आने नहीं देंगे। क्योंकि जैसे बाबा ने देखो दो तीन दिन पहले कितनी अच्छी बाबा ने वाणी चलाई, साकार वाणी, व्यर्थ परचिंतन। अगर व्यर्थ में कोई हाँ जी करता है, वो भी क्या है, ना फरमान वरदार है, बाप के ना फरमान वरदार है। क्योंकि वर्तमान समय जो माया का स्वरूप है वो है व्यर्थ। तो इस व्यर्थ से बच करके हमें बाप समान बनना है।
वर्तमान समय माया का खास स्वरूप जो चल रहा है व्यर्थ बातों से, तो व्यर्थ को हम खत्म कैसे करें? व्यर्थ को खत्म करने के लिए सहज तरीका है, हर व्यर्थ बातों को, निगेटिव बातों को क्या बनाना है, पॉजिटिव बना दो। अगर कुछ भी हमें कोई निंदा होते है, ग्लानी होते है, कुछ भी होता है, तो क्या करना है, उसको निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है। समझे, हमारा कोई अपमान करता है, निंदा करता है, ग्लानी करता है, तो उस निगेटिव को यह समझना है कि मेरे अपमान निंदा ग्लानी नहीं हो रहे, लेकिन क्या हो रहा है, मेरे ऊपर गुलाब का फूल चढ़ रहा है। और जो इस संगम युग में आपके ऊपर अपमान करेगा, निंदा करेगा, ग्लानी करेगा, वो क्या करेगा, वो द्वापर युग में आपका भगत बन करके आपके ऊपर क्या करेगा, रोज गुलाब के फूल चढ़ाएगा। तो आपको भगत चाहिए कि नहीं चाहिए, केवल देवी बन करके मंदिर में बैठे रहेंगे, कोई फूल चढ़ाने वाला, आरती करने वाला, गाने वाला कोई नहीं। तो इसीलिए हमें जिस दिन हमारा अपमान हो गया, निंदा हो गया, बाबा के कमरे में जाओ और बाबा को कहो कि बाबा आज आपने बहुत अच्छा एक भगत को भेजा था, उसने बहुत अच्छा पूजा करके गया, बहुत सुगंधित फूल लाया था, जितनी ग्लानी कड़क, जितना ये कड़क उतना आपका सुगंधित फूल वहां चढ़ेगा। क्योंकि बाबा को तो रहम आता है, इस बच्चा इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है, योग लग रहा है, मैं कुछ इसके सामने भगत भी भेजता हूँ, तो किसी को टचिंग करके भेजेगा, जाओ उसकी पूजा करके आओ। और संगम युग में पूजा करने के लिए कोई थाली सजा करके नहीं लाएगा, लेकिन उसमें कौन सी थाली में लाएगा फूल, लेकिन कौन सी होगी, ग्लानी की, निंदा की, अपमान की। तो इसीलिए हमें कोई अगर कुछ करता भी तो क्या करना है, उसको दुआएं दो। जैसे देवी की पूजा कोई करता है तो देवी क्या करते, उसको आशीर्वाद देते इस भगत का कल्याण हो जाए। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, दुआई देनी। लेकिन हम क्या करते हैं प्रैक्टिकल में, क्या होता है जो कोई अपमान करता है, निंदा करते है, उसको क्या करते हैं, बदवाई दे देते, इसका भी सत्यानुभव से जाए, क्यों मेरे को ऐसा बोल रहा है, अगर ये बदवाई दी तो ये बदवाई जाएगी, उसको तंग करेगी, उसको शांति में रहने नहीं देंगी, और वापिस घूम करके आपको भी शांति में नहीं रहने देंगी। जो किसी को अशुभ भावना रखता है वो आत्मा खुद भी शांति में नहीं रहेंगी, जिसको अशुभ रखा है वो भी शांति में नहीं रहेंगे। इसीलिए बाबा ने खास कहा, बच्चे 2-3 साल से बाबा ने खास इस बात के ऊपर पुरुषार्थ करा रहे, बच्चे दुआई दो, कभी भी किसी को बदवाई। इसीलिए निगेटिव बातों को क्या बनाना है, पॉजिटिव। और वास्तव में ये वेरत क्रिएट होने का कारण है मिस्टर डाउट और मिसअंडरस्टैंडिंग, दो युगल है ये, और ये दो युगल आपको वेरत के क्रिएट कर लेते, दोनों आपस में बात कर रहे, हम यहां से सोचेंगे जरूर मेरे बारे में जरूर होगा डाउट या मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ना कुछ बातों की, वो कुछ अपने काम की बातें कर रहे होंगे लेकिन हम क्या करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कर देंगे। तो मिस्टर डाउट और मिसअंडरस्टैंडिंग दो युगल से बच करके रहना है, ताकि आप वेरत से बच करके रहेंगे। हम ये पॉजिटिव सोचना है, वो को अपने कारोबार की बातें कर रहे होंगे, कुछ अच्छा सोच रहे होंगे, अगर वो वेरत भी सोच रहे होंगे आपके बारे में, लेकिन आप यहाँ से पॉजिटिव सोचो, अगर वो आपके बारे में कर रहे होंगे तो भी क्या हो जाएगा, वो आप चेंज हो जाएंगे। तो इसी तरह में हर चीज में पॉजिटिव लेना है। अगर कोई सुनाता है, समझो आप वेरत आपको आकर के कान में, वो आपके बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे थे, कमाल है आप ऐसे बैठे, तो हम क्या करते हैं, अच्छा और क्या हुआ, और क्या क्या हुआ, सिर को आगे करेंगे। जैसे बाबा ने कल परसों कहा ना, अगर कोई हाजी हाजी कर रहे हैं तो उसको सुनाने वालों को क्या होता है, इंटरेस्ट आता है, वो और ही सुनाता रहता है। तो उसके लिए जब अगर कोई आकर के आपको वेरत बातें सुना रहे, तो आपको क्या करना है, युक्ति अपनाना है, सिर को पकड़ करके रखो, हाँ भी नहीं करो, ना भी नहीं करो। जब सिर हिलाएंगे नहीं तो वो सुनाने वालों को क्या लगेगा, ये तो सुन नहीं रहा है, उसको सुनाएगा नहीं। अगर हम क्या करते हैं, वास्तव में जब कोई वेरत बातें सुनाता है आकर के, उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति के बारे में कुछ देखा होगा तो सुनाएगा, वो ऐसा करता है वैसा, फिर हम भी क्या करते हैं, हाँ वो मेरे साथ भी ऐसा ही करता है, फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। भावन का जो वेरत बातें, सैतानी बातें सुनाता है, उसके साथ दोस्ती नहीं करना, क्योंकि उसे क्या हो जाता है, वायुमंडल क्रिएट हो जाता है, उससे हमारी उसके प्रति वृत्ति खराब हो जाती है। हमें बाबा के कार्य में मदद करना है या बाबा के कार्य में डिस्टर्ब करना है, मदद करना है ना। बाबा तो ऊपर से योग लगा करके वाइब्रेशन को अच्छा बना रहे, लेकिन हम पर चिंतन करके, निंदा करके, किसी की ग्लानी करके वायुमंडल को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। और ये बाबा फिर ऊपर से देखेगा, जैसे कोई फैक्ट्री से काला धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करते है, उसको बंद कर देते हैं। फिर बाबा देखेगा ये नेपाल से या भारत से कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है काला, उसके फैक्ट्री को क्या कर देगा, फिर लॉक कर देगा। इसीलिए पर चिंतन का धुआं कभी भी, वेरत का धुआं हमें कभी भी नहीं निकलना है। समझो वेरत का धुआं निकलता है तो ये वेरत जाकर के कहां जाएगा। जैसे बाबा ने एक बहुत अच्छे एक अव्यक्त वाणी में कहा था कि जब बच्चे वेरत सोचते हैं, वो वेरत का बातें आकर के मुझे अंदर आंखों में चुभ जाते हैं। तो समझो कि बाबा जिस समय आप वेरत चिंतन कर रहे, ऊपर बाबा परेशान होकर के, जैसे बाबा को लग रहा है कि मुझे अगर शरीर होता तो जाकर के इसको उसका मुंह ही चुभ कर लेता, लेकिन अभी क्या करूं। और जब आप योग लगा रहे, अच्छी तरह आप ये कर रहे, उस अच्छे वाइब्रेशन फैला रहे, तो ऊपर बाबा डांस कर रहे, वाह कितनी अच्छी वो खुशबू फैला रहे, बच्चा वाह डांस कर रहे। तो इसलिए हमें बाबा को परेशान नहीं करना है, बाबा के कार्य में डिस्टर्बेंस नहीं करना, ये हमें याद रखना है कि जब हम वेरत कर रहे तो बाबा ऊपर से देख रहे, तो इसी तरह हमें वेरत को खत्म करना है। अगर कोई वेरत सुनाता है, और वेरत उसी को आता है जो साइड सीन देखता है, दूसरों को देखता है, जैसे कभी माउंट आबू वगैरह जाते हैं किसी को चक्कर आते हैं या उल्टी ओमेटिंग होते हैं, क्यों होते हैं उल्टी, और अगर सीधा बस जा रहे वहां ही आप देखते रहेंगे बस के रोड रूट में तो आपको चक्कर नहीं आएंगे। तो इसी तरह जो साइड सीन देखेगा वो क्या करता है, उसने उसको क्या हो जाता है, ओमेटिंग अर्थात उसको परचिंतन चलेगा। तो इसलिए हमें सीधा ही देखना है, नो बाबा कहते हैं सी फादर नो ब्रदर सिस्टर, किसी औरों को नहीं देखना है। और जाकर के हम क्या करते हैं, जैसे किसी को ओमेटिंग आते हैं कहां जाता है, वो देखता है कि कचरादन कहां है, वहां जाकर के क्या करेगा उल्टी कर देगा। इसी तरह अगर हम परचिंतन चलता है वो देखेगा अपना कूड़ादन कहां है, माना जिसके अंदर रोज मैं डालता हूं उसको बुलाएगा, आ जाओ कहीं आ जाओ मैं बहुत अच्छी, कल जैसे आपको मैंने बोला था ना बस ऐसे ही हो गया, उसने ऐसा ही कर दिया मेरे लिए, तो क्या करे उसके कान में उल्टी करे। तो इसीलिए हमें ये वेरत में ना किसी की बातें सुननी है, अगर कोई सुना भी रहे तो उसकी महिमा करो, नहीं नहीं वो बहुत अच्छा है आपने कैसे ऐसे सुना रहे वो बहुत अच्छे, उस समय क्या करो किसी का परचिंतन करना अर्थात बाबा के ऊपर डाउट, इस आत्मा को कैसे चुनाए, भगवान से समझदार तो हम है ही नहीं। इसीलिए ब्राह्मणों के ऊपर भी निश्चय, इन्हीं ब्राह्मणों के साथ कल पहले भी हम रहे थे, इन्हीं टीचर बहनों ने हमको पढ़ाया था, इन्हीं परिवार के साथ रहे थे, इसी गली में इसी घर में रह करके हम संपूर्ण बने थे, फरिश्ता बने थे, ये हमारा पक्का निश्चय हो। तो हमें ब्राह्मण परिवार के, यही ब्राह्मण परिवार हमें कल्प कल्प मिलता है, और इन्हीं के साथ हमें सर्व संबंध से अलग अलग संबंध में पूरा कल्प में भी क्या करना है रहना है। तो इसलिए ब्राह्मण आत्मा का कभी भी जिनकी पूजा मंदिर हो रही, भक्त लोग कह रहे कि मुझे दर्शन दो हे देवी, उसको कितना तड़प रहे उसके दर्शन के लिए, लेकिन वही देवी देवता हमारे सामने है जिसको हम रोज बोल सकते हैं, उसकी दृष्टि ले सकते हैं, उसको कुछ खिला सकते हैं, और उसी ब्राह्मण को तो हमें कितना नशा होनी चाहिए, जिनको दुनिया में लोग ढूंढ रहे वही देवी देवता है हमारे साथ में, तो हमें उसका परचिंतन करना है क्या, और ये हमारा भाग्य है उस आत्मा को हम देख रहे। तो इसलिए कोई भी ब्राह्मण आत्मा का परचिंतन हमें, अगर यहाँ किसका परचिंतन करेंगे उसका फिर जाकर के भगत बनना पड़ेगा, और ये आपको घाटे में है। जैसे हम कहते हैं ना ज्ञान में आते हम कीर्तन भजन बिल्कुल छोड़ दिया, हमने तो स्थूल में तो छोड़ दिया, कभी मंदिर में जाकर के डपली नहीं बजाते टाल नहीं बजाते, लेकिन सूक्ष्म में भजन कीर्तन हो रहा है। कौन सा, जैसे दो चार भजन कीर्तन में क्या होता है, दो चार जन मिलेंगे, एक जन टाल बजाता है, एक जन डपली बजाता है, एक जन गाता है, दूसरा जन दो चार जन सुनते है। तो इसी तरह परचिंतन करना ये भी क्या है, एक प्रकार का कीर्तन और भजन करने के समान है। दो चार जन मिलेंगे, हाँ वो बहन है ही ऐसी, हाँ वो भाई ऐसा ही करता है, हाँ मैंने भी ऐसा ही देखा है, हाँ उसने भी ऐसा किया, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का कीर्तन और भजन कर रहे। अगर यहाँ किसी का जो डपली बजाएगा हाँ में हाँ मिलाएगा, जो गाएगा जो सुनेगा, फिर उसी मंडली को चार पांच को जब दोपहर ही गाएगा, जिसका जिसका परचिंतन किया उसका जब देवी का मूर्ति बनेगी, उसी मूर्ति के सामने वहां जाकर के उसी चार पांच को कीर्तन भजन गाना पड़ेगा चार पांच साल तक, तो कितना बड़ा घाटा हो गया। इसलिए यहाँ परचिंतन करना अर्थात वहां कीर्तन भजन करना, तो इसलिए हमें व्यर्थ बातें कभी भी नहीं करनी है। इसलिए जितना इस व्यर्थ बातों से बच करके रहेंगे, क्योंकि योग लगाने के लिए अगर व्यर्थ बातों का चिंतन करेंगे तो बाबा की याद नहीं रहेंगे, तो इसलिए बाबा की याद रहने के लिए श्रेष्ठ चिंतन चाहिए। तो इसलिए हमें कोई ना कोई सोमानों के अभ्यास लेना है, कुछ ना कुछ चिंतन करना है, क्योंकि और बाबा भी आपको प्यार नहीं करेगा, जो परचिंतन करता है ऐसी आत्मा को बाबा प्यार करेगा। जैसे अगर किसी के घर में जाओ उनके बच्चे भी बैठे हैं बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं है ये तो नालायक है ऐसा करता है वैसा करता है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं कितने अच्छे हैं, बाप क्या कहेगा, बाप कहेंगे तुम यहाँ से भाग जाओ मेरी महिमा नहीं चाहिए, तुमने तो मेरे बच्चों की गिलानी की मेरे को अच्छा अच्छा बोल रहे। इसी तरह सारा दिन कहेंगे भाई ऐसा है ये बहन ऐसे है मेरी बहू ऐसे है बेटा ऐसा है, और शाम को आकर के लाल लाइट बजा करके ट्रांसलाइट लगा करके गीत बजा करके बाबा की महिमा करे, मीठे बाबा प्यारे बाबा आप शांति के सागर है दही के सागर है गुणों के सागर है, बाबा कहेंगे तुम यहाँ से भाग जाओ मेरी महिमा नहीं चाहिए, तुमने तो सारा दिन मेरे बच्चों की खिलानी की मेरे को अच्छा अच्छा बोल रहे आप। तो इसीलिए योग करना मतलब ऐसे नहीं सारा दिन कुछ भी करो, तो इसीलिए बाबा खास इस बात के ऊपर अटेंशन खींचवाते कि बच्चे ये परचिंतन निंदा और ये आगे चल करके बहुत चलेगा, निगेटिविटी बहुत बढ़ती रहेगी, अगर आपको निगेटिव बातों का चिंतन करेंगे तो सुख शांति योग लगेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमें योग लगाने के लिए आगे आने वाली परिस्थिति में सेफ रहने के लिए अभी से प्रैक्टिस करना है। हर निगेटिव छोटी छोटी बातों को पॉजिटिव बना करके सदा खुश रहो, संकल्प विकल्प से बचे रहना है। तो इसीलिए हमें हर निगेटिव बातों को पॉजिटिव बना करके खुशी में रहना है। तब उस समय लोग कहेंगे आपको क्या मिला, इतनी सारी परिस्थिति आपके पास आ रही लेकिन आप ये हो रहा है लेकिन आप सदा खुश है, क्या बात है, आपको क्या मिला। क्योंकि आगे चल करके क्यों आएगी, क्योंकि जैसे कहा ना पेपर में, जैसे दो तीन साल पहले बहुत अच्छी एक लाइन आई थी, जैसे नौ जो ग्रह है एक लाइन में आए और उसके कारण ग्रह का प्रभाव मनुष्य के ब्रेन के ऊपर पड़ रहा है और उसके कारण इतना निगेटिव, जिसका आप भला कर रहे, जिसको आपने कहीं से बुला करके अपने गली में उसको मकान खरीद करके दिया और वहां वो किराए पर रहे, वही व्यक्ति आपका बुरा करना शुरू करेगा। फिर आपको लगेगा ये क्या, हमने इसका भला इतना किया और ये मेरा बुरा कर रहे। जिसका भला करेंगे वही, क्योंकि हिसाब किताब है, अभी रिटर्न हमें जाना है। तो इसलिए जो भी हिसाब किताब है वो ब्राह्मणों के द्वारा अज्ञानी आत्माओं के साथ जो हिसाब किताब है वो पूर्ण करके हमें जाना है। तो इसलिए बातें आएंगी तो हमें, जैसे आज संसार का ये नियम है, जिसका जो भला करेगा उतना ही वो उसका बुरा करेगा। जैसे देखो बाबा ने हमारा कितना भला किया, संगम में आकर के क्या किया, हमें इतना विकारों के गटर से निकाल करके इतना साफ स्वच्छ बना करके स्वर्ग के लायक बना दिया और स्वर्ग में भेज दिया। और उस स्वर्ग में जाने के बाद कुछ दिनों के बाद सत्युग त्रेता के बाद द्वापर में हम गए और फिर वही बाबा को क्या किया, गालियां देना शुरू कर दिया, हे भगवान तुम कुत्ते में है, ठिक्कर में है, फितर में है, तुम सर्वव्यापी है, ये है। तो बाबा ने सोचा कि ऊपर से मुझे, मैंने इतने इसका ऊपर उपकार किया, इसको मैंने स्वर्ग में भेजा, इतना ज्ञान दिया और मुझे गालियां दे रहे, अभी जब मैं नीचे जाऊंगा पहले उसका गला दबाऊंगा, सोचा क्या बाबा ने। बाबा ने क्या किया, उस निगेटिव बातों को पॉजिटिव में बना दिया और सहन किया, सोचा कि ये मेरी भक्ति कर रहा है, मेरी पूजा कर रहा है। और जब वो नीचे आया, जिन्होंने ज्यादा गाली दी थी उसको पहले बुला करके उसको गले लगा दिया, ये है। इसीलिए बाबा केवल ज्ञान सुनाता नहीं कि सहन करो, आप कार्य पर उपकार करो, लेकिन बाबा ने इस बात को क्या क्या प्रैक्टिकल में किया हुआ है। लेकिन आज हमारा क्या है, हमें कोई गाली देता है एक मास उसके साथ बात ही नहीं करेंगे। इसीलिए बाबा मनुष्य आत्मा और भगवान में यही फर्क है, बाबा क्या करता है, सहन करता है, निगेटिव बातों को पॉजिटिव बनाता है। और आपको तो केवल चार पांच लोग गाली देते होंगे लेकिन बाबा को सारे संसार में लोग गाली देते, तो जितने लोग गाली देंगे उतने आपके भगत बनेंगे। जैसे बाबा को जितने सारे संसार में क्या क्या ग्लानी की, निंदा की, इसीलिए उस सारे संसार ही उसका कीर्तन भजन करता है या उसके भगत बन गए। तो इसलिए हमें व्यर्त को खत्म करने के लिए क्या करना है, हर निगेटिव कोई कुछ भी करे हमें सोचना है कि ये मेरा भगत बनेगा, इसलिए उसके बारे में चिंतन करने का ये नहीं, बस निगेटिव को पॉजिटिव बना करके अपने संकल्प को क्या करना है, स्टॉप करना है। तब फिर आप कई निराकार स्थिति, बिंदुरूप स्थिति, योग लगा सकेंगे। अगर सारा दिन आप कर्म क्षेत्र पर सभी की उल्टी सुल्टी, सब निंदा करने वाला, अपकार करने वाला, इसका ही चिंतन करेंगे तो शाम को आपका दिमाग भारी हो जाएगा। और जब योग में बैठेंगे उन्हीं का ही चिंतन आएगा, उन्होंने मेरे को क्यों बोला, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, पहले तो ये मेरे साथ बहुत अच्छे व्यवहार करते थे, मुझे रिगार्ड देते थे, मुझे आगे करते थे, अभी लेकिन मेरे क्या कर रहे हैं, मेरे को कोई रिगार्ड नहीं दे रहे। तो ये चिंतन चलेगा आपको, फिर कहेंगे कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, फिर वो बात याद आएगी, योग लगेगा नहीं। तो इसलिए सारा दिन कर्मों में हमें क्या करना है, इस बातों को, व्यर्थ बातों को खत्म करके एकाग्रता में, एकरस अवस्था में रहना है। और जब जितना सारा दिन एकरस रहेंगे उतना, क्योंकि हम जितना आगे बढ़ेंगे, जैसे कहना बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, बिना सहन करते कोई बड़ा नहीं बन सकते। जैसे शिव बाबा ने सहन किया, ब्रह्मा बाबा ने सहन किया, सबसे ज्यादा सहन किसने किया है, शिव बाबा ने सहन किया सबसे ज्यादा, उसके बाद ब्रह्मा बाबा, फिर उसके बाद मम्मा दादी, जितने भी लोग बड़े बने, महात्मा गांधी बड़ा बना, उन्होंने सहन किया। जैसे दही बड़ा बनाते हैं, दही बड़ा बड़ा कैसा बनता है, कितना सहन करता है, उसको रात को दाल को भिगोते हैं, उड़द की दाल को, फिर सवेरे उसको मिक्सी में पीस लेते हैं, उसके बाद उस आटे को फेंटते रहते, कब तक फेंटते, जब तक वो आटा पानी के ऊपर ना आए, हल्का ना बने, तब तक उसको क्या करते हैं, फेंटते। उसके बाद उसको गरम गरम तेल में क्या करते हैं, डालते हैं उसको, आटे को, वड़े को क्या करेंगे, झारे से फुलाएंगे अच्छी तरह, फुलाने के बाद उसको पानी में डालेंगे, फुलाया फिर उसके बाद दबा दिया, निचोड़ दिया उसको, निचोड़ते समय अगर वो टूट जाएगा उसको रिजेक्ट करेंगे, उसको बड़े के लायक नहीं हो, तो फुलाया भी उसी फुलाया हुए वड़े को क्या किया, दबाया भी, उसके बाद सहन किया और उसके बाद उसने प्लेट में डाल दिया। प्लेट में डालने के बाद फिर क्या करेंगे, दही डालेंगे खट्टा, उसके बाद क्या करेंगे इमली डालेंगे, फिर उसके बाद लाल लाल मिर्ची डालेंगे, मीठा खट्टा सब बातों को उसने सहन किया, तब जाकर के वो क्या बन गया, बड़ा बन गया। और खास बड़ा कब बनाते, बड़े त्योहार पर बनाते। तो इसी तरह बड़ा बनने के लिए कितना सहन किया, इसी तरह हमें भी बड़ा बनने के लिए कोई क्या करेगा, पीसेगा भी, कोई फेंटते भी रहेंगे। कब तक फेंटते रहेंगे, जब तक फरिश्ता बनकर के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक लोग हमें क्या करेंगे, फेंटते रहेंगे। तू चूचा नहीं करना, नहीं तो रोएंगे तो फिर बड़े नहीं बनेंगे। उसके बाद फिर गरम गरम तेल में फिर अच्छी तरह आपको क्या करेंगे, फुलाएंगे भी, अर्थात नशा चढ़ाएंगे। पहले रिगार्ड देंगे आप बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, फिर बाद में नशा उतार भी देंगे, निचोड़ भी देंगे। जैसे वड़े को क्या किया, निचोड़ भी दिया। जब निचोड़ने देंगे तो उस समय अर्थात निंदा करेंगे, फिर आपको ग्लानी करेंगे, आपकी नशा उतार देंगे। उस समय आपको टूटना नहीं, उस समय संकल्प नहीं चलाना। यही लोग मुझे रिगार्ड देते थे, मेरे को पूछते थे, अभी मेरे को कोई पूछता नहीं तो योग लगेगा, फिर वो बड़ा बनेगा ना, फिर टूट जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ज्ञान छोड़ देगा। तो इसलिए हमें उसी समय भी क्या करना है, सहन करना है। उसके बाद फिर कोई नमक भी लगाएगा, मिर्ची भी लगाएगा, अर्थात आपके बातों को उल्टी सुलटी सुना करके, तो सब बातों को जितना सहन करेंगे वो फिर जाकर के बड़े बन सकते। इसीलिए दही बड़ा बनना, जैसे दही बड़ा बनाते सहन करता है, ऐसा बड़ा बनना कोई मासी का करने। तो इसीलिए निगेटिव बातों को हमें पॉजिटिव बना करके व्यर्थ बातों को क्या करना है, खत्म करना है। तो ये व्यर्थ को जितना खत्म करेंगे उतना आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है योग मार्ग में, क्योंकि जो आगे बढ़ते हैं विघ्न और परिस्थितियां आती रहेंगी। आपको जितना विघ्न परिस्थितियां आएंगी उतना आपका भविष्य क्या है, उज्ज्वल है। तो इसलिए हमें निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन करके पुरुषार्थ करना है। और उसके लिए खास हमें अपने बुद्धि को बिजी रखने के लिए, व्यर्थ बातों से मुक्त रहने के लिए कुछ बातों का पुरुषार्थ करना है। एक तो जैसे कहा कि आत्मा अभिमानी स्थिति और व्यर्थ बातें, ऐसा नहीं योग में बैठे उसी समय भी व्यर्थ बातें आए, नहीं तो क्या होता है, जब आप योग करने के लिए बैठेंगे जो सारा दिन कुछ बातें हो गई वही बातें आपको क्या हो जाएगी, याद आएगी। और उस समय आपका अगर योग नहीं लगेगा तो उस समय तो व्यर्थ कैसे चलता है। समझो आपने माया का स्वरूप है, वो उस समय आपको बाबा को याद करने नहीं देंगी माया, उस समय सारा दिन जो देखा है जो सुना है वही बातें याद आएगी। तो कैसे आएगी, उस समय अगर आत्मा में बल नहीं भरेगा, शक्ति नहीं भरेगी, तो सारा दिन आपकी निराकारी स्थिति निर्विकारी स्थिति नहीं रह सकेंगे। तो सारा दिन कौन सी बातें याद आते तो जैसे योग करने के लिए बैठेंगे बराबर, उस समय कारोबार की बातें याद आएगी। समझे कोई माता योग करने के लिए जा रहे तो जाते जाते देखा कि बहुत अच्छा बैंगन की सब्जी आई, सोचेंगे चलो आज शाम की इसकी सब्जी बना देंगे। सोचेंगे पहले जाकर के योग करके आएंगे फिर जाते समय लेके जाएंगे। फिर उसके बाद योग करने के लिए बैठेंगे, वहां लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, सामने कोई योग करा रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। अचानक याद अगर मैंने तो थैली लाया नहीं, वो बैंगन कैसे लेके जाओ। फिर कहेंगे कोई बात नहीं, उसके पास तो प्लास्टिक का थैला तो होगा ही। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप हूँ। फिर अचानक याद अगर मैंने तो पैसे की पर्स तो लाई नहीं, चलो छोड़ दो कुछ और बना देंगे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। फिर अचानक याद है हमारे घर में तो फोन आया था, सवेरे एक मेहमान आने वाला था, कल रात को फोन आया था, मैंने उस समय सोचा था कि छोले बनाओ सफेद चना, लेकिन रात को ऐसे कुछ काम करते करते वो भूल ही गए, तो भिगोए नहीं आया। तो अभी क्या कर सकते, वो क्या पसंद करेगा, लाल लाइट चल रही, गीत बज रहा है, सामने योग करने के लिए भी बैठे, लेकिन चिंतन कौन सा चल रहा है, छोले भिगोए नहीं। फिर सोचेंगे चलो कुछ और दूसरा बना देंगे कुछ। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर अचानक याद है अगर वो तो गैस के ऊपर जो दूध उबल रहा था वो शायद मैंने बंद किया है या ऐसा ही चल रहा है। फिर कहें चलो बाद में देखेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप। फिर ऐसे करते करते जो लाल लाइट चल रही थी वो आपकी वो क्या हो गई, सफेद हो गई। सामने जो योग करा रहा है उसको लग रहा है कि वाह इतना कितना अच्छा, आधा घंटा इसने योग किया, लेकिन इसका योग कहाँ चल रहा है, वो बैंगन योग चल रहा है या छोले योग चल रहा है, वो बाबा योग नहीं है। तो जब आगम योग में बैठ करके अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मा में बल कैसा भरेगा, शक्ति कैसी भरेगी। अगर ये योग चलेगा तो सारा दिन आपकी, क्योंकि जिसकी बैठक योग में जो अच्छी तरह पावरफुल योग करता है, जिसकी मन और बुद्धि बाबा के पास है, वही सारा दिन निराकारी स्थिति में रह सकता है। क्योंकि सारा दिन कर्मों में योग युक्त रहने के लिए बैठक योग में आपकी आत्मा में बल भरना आवश्यक है। जब बल भरेगा तब निराकारी स्थिति, तब आपका कर्मेंद्र पर राज्य, तब आप स्वराज्य अधिकारी बन सकेंगे। इसलिए जब भी बैठ करके योग करते हैं तो ऐसे व्यर्थ, ये माया का स्वरूप है, तो इस स्वरूप से आपको आएगी। घर में छोड़ो, लेकिन यहाँ भी अगर बैठेंगे, बाबा के कमरे में बैठेंगे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, अरे उसी दिन जो कल्चरल प्रोग्राम हुआ था उसका कैसेट बहुत अच्छा था, वो हमारा भाई बहनों ने भी किया था उसमें डांस, वो कैसेट जरूर लेके जाकर सेंटर पर दिखाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। हाँ अभी जरूर जाएंगे, योग पूरा हो जाएंगे तो जरूर जाऊंगे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर अचानक याद है, अगर वो अच्छा होगा, स्टिकर लाने के लिए मुझे एक माता जी ने कहा था, मुझे याद आया स्टिकर भी लेके जाना क्योंकि कल ही जाना है मुझे। तो फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर वो सोचेंगे वो दीदी को भी मिलना है तो जाने का कब प्रोग्राम है। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। इस तरह से हमें ये चिंतन, ये भी क्या है, अगर ये चिंतन चलेगा तो आत्मा में बल भरेगा। तो इसीलिए योग, रियली वाला योग करना है। जब योग में बैठते हैं, जैसे आज बाबा ने कहा ना, जब योग करते हैं उसी समय यहाँ लटके नहीं रहना है, या फोटो के तरफ या बाबा के तरफ, यहाँ नहीं, ऊपर जाकर के ऊपर बाबा को देखो। तो ऊपर हमें परमधाम को, बाबा को देखते हुए क्या करना है, याद करना है। तब आत्मा के अंदर बल भरेगा, शक्ति भरेगी, पावर भरेगी। और जब ऐसा योग करके आप उठेंगे तो आपने जो योग में आनंद लिया है, शक्ति लिया है, पावर भरी है, वो फिर आपकी सारा दिन निराकारी अवस्था रह सकेगी, आपको आनंद आएगा। नहीं तो हमारा क्या होता है, योग में बैठते समय हमारा फ्लाइट उड़ता ही नहीं, वही एयरपोर्ट पर घूमता रहता है, मना शांतिवन में ही घूम रहा है या सेंटर पर ही घूम रहा है बुद्धि इधर उधर। तो हमें हमारा एयर फ्लाइट कहाँ जाना है, परम धाम तक जाए, उड़ा करके परमधाम में लेके जाना है, वहीं घुमाना नहीं है। तो मेरा फ्लाइट ऊपर घूम रहा है या परमधाम में, कैसा पता चलेगा, मेरे विचार किस क्वालिटी के चल रहे। अगर मेरे कारोबार के प्रति इधर उधर व्यर्थ बातों की तरफ प्रति आई तो समझो कि मेरा फ्लाइट यहीं घूम रहा है एयरपोर्ट पर। तो इसीलिए हमें ये व्यर्थ को खत्म करना है। योग में भी इसी स्वरूप से माया आ रही, तो इसीलिए हमें योग में बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर के क्या करना है। और ये व्यर्थ किसको आएगा, जो सारा दिन व्रत देखेगा, जो सारा दिन कर्म में योग युक्त नहीं होगा। जैसे जो अर्जुन था उसको क्या दिखाई पड़ता था, जैसे मछली पानी के अंदर घूम रहे और उसका वो अंक वही दिखाई पड़ता था। इसी तरह हमें भी सारा दिन जब चलते हैं, क्योंकि व्रत आने का एक कारण है क्योंकि हमारा जब योग चलता है, योग में विचार जो चलते हैं, विचार कैसे चलते हैं, जहां आपकी बुद्धि है उसी प्रकार के विचार चलते। अगर आपने बुद्धि यहीं छोड़ दिया और मन को लेके गए ऊपर, तो आपके वो तो कुछ दिन, कुछ समय तक विचार चलेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। जब विचार देना बंद करेंगे तो जहां आपकी बुद्धि है, जहां आपका बुद्धि रूपी कैमरा जिस चीज को देख रहा है, उसी प्रकार के मन में विचार चलेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें योग में बैठते ही क्या करना है, पहले बुद्धि को लेके जाना है। और सारा दिन भी समझो आप योग करने के लिए आ रहे तो आते समय क्या करो, बुद्धि के द्वारा ऊपर जाकर के पहुंचो, अभी हम जाएंगे योग करेंगे, बाबा ऊपर बैठा होगा परमधाम में, इसी नशे में चलते फिरते भी हमें क्या करना है, रहना है। तब जब योग में बैठेंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, बाबा याद आएगा। तो इस तरह से हमें व्यर्थ बातों को खत्म करके रियली वाला योग भी करना है। ऐसा नहीं केवल बैठ करके दो घंटा किया, तीन घंटा किया, लेकिन आत्मा में बल नहीं भरा, शक्ति नहीं भरा, तो योग नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें सारा दिन क्या करना है, कुछ ना कुछ रोज एक सामान लेकर के बैठो, कुछ ना कुछ प्लान लेकर के बैठना है। नहीं तो जैसे वो बंदर होता है ना, जब उसका सोचता है कि कल सवेरे मैं उठूंगा, पहले क्या करूंगा, घर बनाऊंगा। जब कल सवेरे उठता है तो क्या करता है, ये डाली से डाली से डाली से टाइम क्या करता है, वेस्ट करता है। फिर जब रात को ठंडी लगती है, उसको लगता है कि पहले कल सवेरे उठूंगा, पहले मैं घर बनाऊंगा, उसके बाद फिर कल सवेरे उठता है ये डाली से। इसी तरह हम जब रात को सोते हैं तो लगता है कि आज बहुत परचिंतन किया, आज बाबा ने तो कहा था बच्चे परचिंतन नहीं करो, व्यर्थ नहीं करो, कल से हम बहुत अच्छा मौन भी रहेंगे और बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। फिर कल सवेरे उठे, मुरली सुना, उसके बाद कर्म क्षेत्र पर गए, इसके साथ हंसी मजाक किया, इसका कुछ अवगुण देखा, थोड़ा टाइम वेस्ट करते हैं, फिर रात को सोएंगे, फिर सोचेंगे आज तो मजा ही नहीं आई, चलो कल से हम जरूर करेंगे, कल उठेंगे कल। फिर कल सवेरे उठे, फिर मुरली सुना, फिर कर्म क्षेत्र पर गए, इसके साथ हंसी मजाक किया, उसके साथ ये किया, फिर रात को सोते। ये हमारा बंदर की कहानी की तरह रोज चलता है। इसीलिए हमें ऐसा नहीं, लेकिन रोज क्या करना है, हमें कुछ ना कुछ लक्ष्य लेना है कि आज मैं ये पुरुषार्थ करूंगा, ये मेरे मन के लिए, बुद्धि के लिए इस सामान का अभ्यास करूंगा। और उसको क्या करना है, सारा दिन चेक करना है कि आज मैंने जो सामान लिया, आज मैंने जो संकल्प किया, उस अनुसार किया। अगर हमने कोई सामान लेकर के करेंगे तो व्यर्थ आने का प्रश्न ही नहीं है। व्यर्थ क्यों आता है, क्योंकि मन को और बुद्धि को कोई प्लान नहीं है। जब अगर अब कोई बिजी है तो कोई दूसरा जाएगा नहीं, माया कब आते हैं, जब हम फ्री है। तो इसलिए हमें रोज कुछ ना कुछ सामान लेकर के, विजन लेकर के क्या करना है, और विजन लेकर के, सामान लेकर के जब आप अभ्यास करेंगे, आपको योग इजीली लगेगा। जैसे कैसे सामान लेना है उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको सुनाते हैं, जिसे आप उसमें बिजी रहेंगे, बाबा के साथ रहेंगे तो माया भी आपके पास नहीं आएंगे, बाबा को भी सदा साथ रहना है। जैसे एक विजन आपको सुनाते हैं किस तरह से हमें अभ्यास करना है। जैसे बाबा कभी कहते हैं कि बच्चे तुम विजयी योद्धा हो, समझो इस सम्मान का आपको अभ्यास करना है और व्यर्थ से बचना है। तो जैसे सोने के लिए हमें क्या करना है, ऊपर रोज जाना है, क्योंकि हमारा ये सृष्टि क्या है, युद्ध करने का मैदान है। जैसे कृष्ण और अर्जुन दोनों को कोई युद्ध के मैदान में नहीं सोते थे, लेकिन कहा वहां से जाकर के जहां उनका सोने का स्थान है वहां जाकर के सोते थे। इसी तरह हमें भी क्या करना है, हम ये सोचना है कि हम युद्ध के मैदान में ऊपर से आते हैं और ऊपर से आकर के सारा दिन क्या करते हैं, युद्ध करके फिर वापिस क्या करते हैं, ऊपर जाकर के और जाकर के सारथी के गोद में सोते, तकिया पर सिर नहीं रख रहे, लेकिन कहा कर रहे सारा दिन युद्ध करके माया को खत्म करके जाकर के सारथी के गोद में सोए। जैसे और जैसे कृष्ण क्या करता है, जब अर्जुन बोलता है कि आज मैं युद्ध के मैदान में नहीं जाऊंगा, मुझे ये सब कैसे मैं मारू इन सबको, तो इसीलिए क्या करता है, वो बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो अर्जुन क्या, कृष्ण क्या करता है, उसको सम्मान जागृत करता है, नहीं तुम चलो, मैं तुम्हारा सारथी हूं और तुमने तो पहले भी मारे थे इन लोगों को और ये तो सब मरे पड़े, तुम चलो, तुम केवल हिम्मत रखो। उसको क्या करता है, उसका उमंग उत्साह बढ़ाता है। तो इसी तरह हमें जब बाबा के गोद में सोते हैं, सारथी के गोद में सोते हैं, जब सवेरे उठते ही क्या करना है, बाबा कहने, बाबा आज नीचे नहीं जाऊंगा मैं, आज आपके पास ही रहूंगा। तो बाबा कहते नहीं बच्चे, तुम तो विजय योद्धा हो, तुम माया से क्यों घबराते हो, तुम तो कलप कलप के विजय हो और तुम क्यों घबराते हो, मैं तुम्हें मारने माया जीत बनने के लिए कुछ अस्त्र शस्त्र देता हूँ। ऐसा करके बाबा आपको ड्रामा के ढाल दे रहा है, ज्ञान की तलवार दे रहा है, पवित्रता का कवच दे रहा है और शक्तिशाली आपको बना रहे। माना जब हम योग में बैठते हैं तो बाबा के सामने, सारथी के सामने बैठे और सारथी मेरे अंदर बल भर रहा है, शक्ति भर रहा है, अस्त्र शस्त्र दे रहा है। इसी तरह अव्यक्त वतन में आप योग में अमृत वाला पावरफुल बनो और उसके साथ सारथी ने क्या किया, कह रहे कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा सारथी हूँ। और कभी भी सारथी घर में और योद्धा मैदान में रहता है क्या, जैसे कृष्ण घर में बैठा है और अर्जुन युद्ध के मैदान में, ऐसा होता है नहीं। तो इसी तरह बाबा ने एक दिव्य रथ बना दिया और उस दिव्य रथ में आपको पीछे बिठा दिया, जैसे कृष्ण आगे बैठता है और अर्जुन कहाँ बैठता है, पीछे। तो इसी तरह हम दिव्य रथ में बैठ करके अभी नीचे सृष्टि पर जा रही माया जीत बनने के लिए, माया को समाप्त करने के लिए। और जैसे अमृत वाला करके फिर नीचे आए, उस समय जैसे कृष्ण पूछते ना अर्जुन को, अच्छा कहाँ चलना है आपको, बोलता है कि मुझे अभी इस तरफ लेके चलो। इसी तरह बाबा पूछ रहे हैं अभी आपको कहाँ जाना है, बोलो कि मुझे अभी सेंटर पर क्लास सुनने के लिए लेके जाओ, मुरली सुनने के लिए। तो इसी तरह आप रास्ते में चल रहे मुरली सुनने के लिए अमृत वाला करके, तो रथ में बैठे हैं कहीं पैदल नहीं चल रहे। तो इसी तरह वो सारथी को देखते हुए कहो कि सचमुच सारथी आप मेरे लिए कितना कष्ट सहन किया, आप मेरे लिए आप कितने सुंदर है, आपकी सुंदरता के सामने संसार की सब सुंदरता फीकी है। इसी तरह उसके साथ बातें करते चलो तो आपको आपने रास्ते में क्या देख रहे ये कुछ भी पता नहीं चलेगा, आप बिजी रहेंगे रूरवान में बाबा के साथ। और जब सेंटर पर गए, रथ को नीचे खड़ा कर दिया और आपको उंगली पकड़ करके पीछे ला करके चेयर पर बिठा दिया और खुद जाकर के संदली पर बैठ करके आपको गीता का ज्ञान सुना रहे, हे पार्थ आज माया तुम्हें परचिंतन के रूप में आएगी, आज वेरत के रूप में आएगी, आज माया तुम्हें इस रूप में आएगी। इसी तरह माया का क्या क्या प्लान है वो सुना रहे और सुना करके फिर बाद में वरदान दिया, स्लोगन दिया, फिर मुरली सुन करके फिर बाद में उंगली पकड़ करके रथ में बिठाया, फिर पूछता है कि कहाँ चलना है, बोलो कि मुझे अभी घर के तरफ लेके चलो। जब घर के तरफ जा रहे उसको कहो कि आज आपने कितना अच्छा माया का प्लान सुनाया, आज मैं ऐसा ही करूंगा, परचिंतन बिल्कुल नहीं करूंगा, व्यर्थ नहीं बोलूंगा। इसी तरह जो मुरली सुनी उसको रिपीट करते हुए जाओ। जब घर में पहुंचे उसको पूछो कि अच्छा नाश्ता क्या पसंद करेंगे, आप क्या खाएंगे। इसी तरह नाश्ता बना रहे लेकिन उसको पूछते हुए क्या कर रहे, बना रहे। और उस समय नशे में रहो कि स्वयं सर्वशक्तिवान, स्वयं भगवान आज मेरे घर में मेरे पास आया है। इसी तरह नशे में आप रहो तो सचमुच आपको उसके बाद नाश्ता पूरा हो गया, उसके बाद पूछ रहे कि कहाँ चलना है, समझो मार्केट में जाना है तो कहो कि मुझे मार्केटिंग करने के लिए जाना है, चलो उधर लेके चलो, हम आपका हमारा मार्केट भी दिखाएंगे और मुझे थोड़ी सब्जी भी खरीद करके लाना है। तो इसी तरह अगर उधर जा रहे कुछ धोखा होने वाला है, कुछ होने वाला तो आपको टचिंग होगा। इसी तरह सारा दिन अगर सारथी के साथ आए उसको देख रहे तो आप क्या है, बिजी है। अगर कुछ भी व्यर्थ करेंगे तो कहे उसका आवाज आएगा, तुम ये क्या कर रहे। तो इसी तरह ये है एक प्रकार की विजन, जब इसमें बिजी रहेंगे तो आपको माया आएगी नहीं। और जब फिर योग करने के लिए सारा दिन ये करके फिर वापिस जा करके, तो इसी तरह रोज ऐसे हमें कुछ ना कुछ बातों में क्या करना है, बिजी रहना है। तो फिर जब बिजी रहेंगे मन बुद्धि से सोमानों में, तो माया कभी भी व्यर्थ बातों से नहीं आएंगी। ऐसा कोई हमें प्लान नहीं लेते, कुछ नहीं लेते तो माया। तो इस तरह से हमें विशेष जो बाबा ने अभी वाणी चलाई कि व्यर्थ से बचे रहो, तो व्यर्थ से बचने के लिए इन बातों का अभ्यास करके ब्रह्मा बाप समान क्या करना है, संपूर्ण और संपन्न बनना है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन करके रोज बाबा हमें दिल तख्त पर बिठाए। एक दिन भी हमें हकालपट्टी न करे, क्योंकि अकल देगा कब, जब उसके मत पर नहीं चलेंगे जो सो पर राज्य नहीं करेंगे। इसलिए रोज हमें स्वराज्य अधिकारी बनकर के राज्य करना है। इसलिए योग के अंदर भी व्यर्थ नहीं करना है और उसके बाद सारा दिन भी निगेटिव बातों को पॉजिटिव बना करके व्यर्थ मुक्त उतना ही बाप समान बन जाएंगे। इस तरह से ये पुरुषार्थ हमें करना चाहूंगा।